ओम शांति। रात की क्लास चल रहा था 18/1/1966, इसी तारीख को रिवाइज हुई 1967 में। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी तुमको ये सारा ज्ञान है, जैसे कहा जाता है नाटक की आदि मध्य अंत को जो छोटा एक्टर होगा वो भी जानता होगा। तो दुनियावी नाटक तो होता है छोटा नाटक, और ये तो है ह्यूज ड्रामा। पांच हजार वर्ष का चतुर्युगी का ब्रॉड ड्रामा, परंतु इस ड्रामे को जो भी सभी एक्टर्स होंगे, संपन्न स्त्री जीवा होंगे तो जानते तो होंगे ना। ब्रॉड ड्रामा के पार्ट को भी सभी जानते होंगे। कब जानते होंगे? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में या कलयुग में? है पुरुषोत्तम संगम युग में जानते होंगे, जबकि पुरुष रूप में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो आत्माएं अपने सुप्रीम सोल बाप से आत्मा का परिचय लेती हैं, और परिचय लेकर के आत्मिक स्वरूप में टिकने का अभ्यास करती हैं। अभ्यास जब पक्का हो जाता है तो अपनी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में अनेक जन्मों का कैसा कैसा क्या क्या पार्ट भरा हुआ है वो सभी एक्टर से जान जाते हैं। परंतु ये ह्यूज ड्रामा है, बहुत बड़ा ड्रामा है, इसलिए इनको थोड़े में जानना होता है। तो निराकार आत्माओं का जो निराकार बाप है, जिसके पास निराकारी ज्ञान का खूट भंडार है, बच्चों को देता है, तो पहले तो थोड़े में समझाते हैं, क्योंकि पहले तो बच्चे छोटे छोटे होंगे ना, बच्चा बुद्धि होंगे, सालिम बुद्धि बनते हैं, मना आत्मा के ऊपर एकाग्र बनते हैं, एकाग्रता की स्थिति आती है, संपन्न आत्मा बनते हैं, तो बच्चे स्वयं ही अपनी आत्मा के अनेक जन्मों के पार्ट को समझ जाते हैं कि कौन कौन से जन्मों में मैंने कौन कौन सा चोला लेकर के पार्ट बजाया है, कितनी कितनी आत्माओं के संपर्क में आया हूँ और कितनी आत्माओं के संबंध में आया हूँ, क्योंकि संपर्क हल्का होता है और संबंध गहरा होता है। तो हर एक आत्मा रूपी सितारे में अपनी ही अपनी दुनिया बसी हुई है। वो आसमान के सितारे नहीं है, जड़ सितारे जिनमें कोई दुनिया बसी हुई हो। ये तो तुम बच्चे आत्मा रूपी सितारे हो जिनमें एक एक में अपनी दुनिया बसी हुई है। तो बाप इस यूज ड्रामा के चार सीन में जो चार युग हैं खास, उन युगों का भी राज बताते हैं। कैसे दुनिया की हर चीज सतोपदान सत्व सामान्य रजो और तमो चार अवस्थाओं से पसार होती है। तो आत्मा भी चार अवस्थाओं से पसार होती है। तो युगों की बात भी समझाते हैं। युग भी पहले सत्व प्रधान, फिर त्रेता सत्व सामान्य, फिर द्वापर रजो प्रधान, कलयुग है तमो प्रधान। प्रकृति का भी राज समझाते हैं। प्रमाण प्रकृष्ट रूपेण, कृति माने रचना, जो परम पुरुष की प्रकृष्ट रचना है उसका राज भी बताते हैं। और ये माया का भी राज समझाते हैं। संपत्ति का भी राज समझाते हैं और सहज ही समझाते हैं, ताकि कोई भी कहो कि अभी संगम युग में जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, हर एक एक से एक उत्तम पार्ट बजाने वाली मनुष्य आत्माओं को अभी संगम में आत्माओं के बाप से वर्षा मिलता है। आत्मा निराकार तो निराकार आत्माओं का बाप निराकार, उस निराकारी बाप का वर्षा भी निराकार, और वो निराकारी वर्षा है ज्ञान का वर्षा। तो अभी शिव बाप से नंबर वार आत्माओं को वो वर्षा मिलता है। शिव बाप बताते हैं कि मैं जिस तन में मुकर्रर रूप से आता हूँ वो साकार तन, और मैं सदा निराकार आत्मा जिसकी बिंदु काई नाम से वह है, उसको शरीर होता ही नहीं। तो मैं बिंदु आत्मा जब इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आता हूँ तो तुम बच्चों को वरदान देता हूँ कि तुमको आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाकर जाऊंगा। तो जो बच्चा मनुष्य आत्मा रूपी आत्माओं के बीच में बड़ा बच्चा होता है, जिसे शास्त्रों में भी प्रजापति कहा गया है, वो अंतिम स्वरूप है पुरुषार्थ का। 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का पति, क्योंकि शिव बाप तो सिर्फ आत्माओं का बाप है, पति नहीं है। आत्मा आत्मा भाई भाई, और शिव बाप सिर्फ बाप। आत्मा भी भाई भाई हैं, भाई बहन भी नहीं। जब मैं मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूँ तो बताता हूँ कि इस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके ये मुकर्रर रथधारी आत्मा जब संपन्न स्टेज प्राप्त करती है तो बाप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी पहले पहले बनती है, जिसको कहते हैं कि बाप का बड़ा बच्चा बाप समान कहा जाता है, बाप नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? बाप समान कहा जाता। इसीलिए मुसलमानों ने भी बोला है आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो खुदा आता है किसी के बुलाने से नहीं आता। हजारों वर्ष भक्त बुलाते रहते हैं तो भी नहीं आता, उसे जब आना होता है तो खुद ही आ जाता है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आ जाता है। अपना आत्मलोक को छोड़कर आ जाता है, जिसे अंग्रेज लोग सुप्रीम बोर्ड कहते हैं, सोल वर्ल्ड कहते हैं। उस सोल वर्ल्ड को वो आत्माओं का बाप छोड़ करके इस सृष्टि पर खुद आता है और आकर के मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय देता है। पहले पहले पुरुषोत्तम संगम युग में जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाले पुरुष आत्माएं हैं, शरीर रूपी पुरु में आराम से शयन करने वाली संपन्न स्टेज में, उन आत्माओं के बीच जो पुरुषोत्तम नारायण कहा जाता है, नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाला, उस नारायण का परिचय देता हूँ। जिस वर्ष में उसका परिचय होता है ब्राह्मणों की दुनिया में, उस वर्ष को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? क्योंकि वेद के दो बाप हैं, एक आत्माओं का वेद का बाप और दूसरा मनुष्य आत्माओं का वेद का बाप। तो मनुष्य आत्माओं का जो वेद का बाप है, जो सारी मनुष्य सृष्टि का प्रजापति घोषित होता है, आदि में जब ज्ञान का बीज बोने का निमित्त बनता है तो मैं उसे प्रजापति बोलता हूँ। परंतु पुरुषार्थ की संपन्नता में जब सारे विश्व की राजाई उसे प्राप्त होती है तो विश्वपति अथवा विश्वपिता कहा जाता है। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में कौन से बाप से वर्षा मिलता है? मनुष्य आत्माओं को, क्योंकि दो भेद के बाप बताए, एक आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का निराकार बाप, और दूसरा साकार मनुष्य आत्माओं का साकार बाप। तो कौन से बाप से वर्षा मिलता है? है ब्रह्मा से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा बाप से वर्षा मिलता है, है ब्रह्मा बाप से वर्षा मिलता है। कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा कौन सा? जो बड़े से ब्रह्मा, बड़े से बड़े ब्रह्मा कहा जाता है, क्योंकि शास्त्रों में भी गायन है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो शिव बाप जब आते हैं, जिस मकर रथ को अपना आधार बनाते हैं, उस मुकर्रर रथधारी को क्या नाम देते हैं? मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो जिसमें अव्वल नंबर में प्रवेश करते हैं वो अव्वल नंबर का ब्रह्मा, और ब्रह्मा सो विष्णु। अव्वल नंबर का होगा तो विष्णु और विष्णु की भुजाओं के बीच अव्वल नंबर में ही पार्ट बजाएगा या नीची भुजाओं के रूप में पार्ट बजाएगा? तो चतुर्भुजी ब्रह्मा भी गाया हुआ है, पंचमुखी ब्रह्मा भी गाया हुआ है। चतुर्मुखी जो ब्रह्मा गाया हुआ है, जो ब्रह्मा सो विष्णु की चार भुजाओं के रूप में प्रत्यक्ष होता है, दो भुजाएं दाईं ओर की और दो भुजाएं बाईं ओर की, चार भुजाधारी विष्णु गाया हुआ है। विष्णु अर्थात नो विषयताल, चाहे वो संगम युग का डायरेक्ट नर से नारायण बनने वाला विष्णु हो, और चाहे वो सतयुग में जन्म लेने वाला विष्णु रूप आत्माएं हो, उनको कहेंगे नो विषयताल। विषय विकार का नाम निशान नहीं होता, वो चारों ही आत्माएं और उनके संस्कार स्वभाव मिलकर के संगम युग में ही एक हो जाते हैं। परंतु जो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है, वो मनुष्य सृष्टि के माता पिता के रूप में गाया हुआ है। जिसका स्वरूप शिव के मंदिर में दिखाते हैं, शिवलिंग बीच में रखा हुआ है, और शिव के पुराने मंदिरों में आज भी देखा जाता है कि देवताएं चारों ओर दीवारों में रखे हुए हैं मूर्ति रूप में। इसे साबित होता है कि उस यादगार मंदिर में बड़ा कौन है, बीच में रखा हुआ बड़ा है या बाजू में रखे हुए देवताएं बड़े हैं? बीच में रखा हुआ जो शिवलिंग दिखाया जाता है वो है सात देवताओं का बाप। मनुष्यों को क्या बनाने वाला? देवता बनाने वाला बाप। अथवा यूं कहें कि देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाने वाला बाप। वो बाप सिर्फ निराकार आत्मा के रूप में है या निराकार साकार का मेल है? जो निराकार और साकार का मेल है वो कौन सी आत्मा का परिचायक है, यादगार है? शिवलिंग, जिसको कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तू ही एक मेरी माता है और तू ही एक मेरा पिता है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग की ओर इशारा करके कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, तू एक ही मेरी माता है और एक ही मेरा पिता है। माता पिता एक कैसे हो सकते? माता फीमेल होती है और पिता मेल होता है, तो एक क्यों कह दिया है? है? एक ही स्वरूप में दोनों हैं। दोनों कौन कौन आत्मा है? निराकार बाप भी है उसमें। निराकार बाप तो अक्सर कहता है परम ब्रह्म जिसे कहा जाता है, उसके मुख से निकली हुई वाणी जिसे हम मुरली कहते हैं, उसमें बीसियों बार बताया है कि मैं न पूज्य बनता हूँ न मैं पुजारी बनता हूँ। तो शिवलिंग का जो सात्विक रूप सोमनाथ मंदिर में दिखाया, जिस सोमनाथ मंदिर में पत्थर का लिंग भी दिखाया गया बड़ा रूप और सूक्ष्म रूप ज्योतिबिंदु की यादगार, आत्मा की यादगार हीरा भी दिखाया गया, तो अब बताओ वो हीरा किसकी यादगार और लिंग किसकी यादगार है? हीरो पार्टदारी की यादगार। हीरा सुप्रीम सोल बाप शिव की यादगार नहीं है? वो बिंदी है। हाँ तो क्या हुआ, वो हीरा जो है वो बिंदी नहीं है, बिंदा है क्या? बड़ा रूप है। जो हीरा दिखाया गया सोमनाथ मंदिर में वो बिंदी सूक्ष्म रूप नहीं है। हैं? शिव बाप की यादगार है। अभी तो बोला शिव बाप ही तो कहते हैं ब्रह्मा मुख से कि मैं न पूज्य बनता हूँ न मैं पुजारी बनता हूँ। तो बताओ वो लिंग के बीच में जो हीरा बिंदु रूप रखा हुआ है वो किसकी यादगार है? मैंने निराकार प्रवेश किया, उस प्रवेश की हुई आत्मा की यादगार हीरा है, है? अरे है या नहीं है? का मतलब दो बातें हो गई। एक बात तो ये कि मैं न पूज्य बनता हूँ न मैं पुजारी बनता हूँ, तो शिवलिंग में जो हीरा है वो पूज्य नहीं है। पूज्य है या नहीं है? तो वो निराकार की यादगार नहीं है, है? आज मंदिरों में काला लिंग रूप पत्थर दिखाते हैं, उसमें बिंदु नहीं है, इसका मतलब उसमें शिव नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है, बड़ा साकार रूपी है, जिसके लिए मुरली में बोला, ब्रह्म वाक्य बोला है ना, बोला है, क्या बोला है याद आया है? छोटे रूप को याद नहीं कर सकते हो, बिंदु रूप निराकार को याद नहीं कर सकते हो, तो बड़ा रूप ही मेरा याद करो, बोला कि नहीं है? जो निराकार स्वरूप है उसको याद करना कठिन होता है, बिंदु रूप को, सूक्ष्म को याद करना कठिन और बड़े रूप को याद करना सहज होता है। हम ब्राह्मण बच्चे अपना अनुभव भी जानते हैं, बाबा ने हमें 20 बार बोला होगा अमृत वेले बच्चे बाप को याद करो, तो हम याद में बैठते हैं 2-3 घंटे, कितना याद रहता है निराकार। तो ज्योति बिंदु अमृत बेले जब याद में बैठते हैं तो कितनी देर याद रहता है? अरे कम माने कितना, 1 घंटा, आधा घंटा, अरे अरे बताओ, सच्ची सच्ची बता दो ना, 80 साल हो गए हैं? तो बहुत थोड़ा बता दिया, 80 साल में रोज हम ये सुनते रहे ब्रह्म वाक्य में बाप को याद करो अमृत बेले, और 80 साल में हम अंश मात्र याद करते हैं, कर पाए है? तो बताओ, अब तो ये अंतिम साल चल रहा है, अभी तो बता दिया वाणी में, ब्रह्म वाक्य में ही बता दिया, तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने, तो 40 साल बच्चे पुरुषार्थ करने वाले कोई तो होंगे कि नहीं होंगे हैं? तो इसका मतलब हमने स्वीकार कर लिए कि हम 40 साल में सतो प्रधान बनने वाले बच्चों में से नहीं है, पक्का कर दिया। और अभी 23 जुलाई की अव्यक्तवाणी जिसे संदेश कहा, उसमें बोला बच्चे ऐसे ना समझे 20 साल पड़े हैं, अभी 20 साल तो है ही नहीं। क्यों ऐसे क्यों बोला? जब मुरली में कई बार बताया कि संगम युग है ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 1936 से लेकर के 2037 तक, 36 तक, तो हम बच्चों के लिए ऐसे क्यों कह दिया कि 20 साल तो है ही नहीं है? माने सूर्यवंशी बच्चों के लिए कितना टाइम? 10 साल। 10 साल में हमारी कंप्लीट राजधानी स्थापन हो जाएगी, जिस राजधानी का मुकाबला दुनिया के कोई देश की राजधानी के तंत्र मुकाबला कर ही नहीं सकेंगे। और बाप विश्व का बादशाह डिक्लेयर हो जाएगा, जो बादशाह होता है वो प्रजा के ऊपर पूरा होल्ड रखता है और प्रजा को भी अपने बादशाह के ऊपर पूरा विश्वास और निश्चय होता है। तो विश्वास और निश्चय बैठेगा तभी वो महामंत्र सफल होगा। कौन सा? मन मना भव। कौन सी आत्मा ने कहा मेरे मन में समा जा?
ब्रह्मा भवन का।
ब्रह्मा वाली आत्मा कैसे कहेगी मेरे मन में समा जा? उसका मन तो इतना विशाल है ही नहीं जो बाप को पहचान सके। ब्रह्मा वाली आत्मा ने मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचाना है? बाप को ही नहीं पहचाना, वो तो बच्चा बुद्धि रहे। हाँ, हम बच्चों के बारे में 20 बार मुरलियों में बोला है कि तुम बच्चों में और कोई गुण हो या न हो, एक गुण तो विशेष रूप से है ही है जो शिव बाप को सबसे जास्ती पसंद है। कौन सा गुण? बाप की पहचान। इतनी बड़े विश्व के अंदर तुम बच्चों ने बाप को पहचाना और कोई धर्म वाले ने बाप को नहीं पहचाना। यहाँ तक कि चंद्रवंश के साथ जो चंद्रमा जुड़ा हुआ है, उस चंद्रमा और चंद्रवंश ने भी नहीं पहचाना। इसलिए बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, ये बीच में सुन लेता है। ऐसे क्यों बोला है? इनसे बात क्यों नहीं करते है? हाँ, इनसे बात करने से फायदा भी नहीं है, ये बात को समझेगा ही नहीं कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है। ये तो देहधारी धर्मगुरु है, जैसे और इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट है, देहधारी धर्मगुरु है। देह के अहंकार में आकर के बाप को पहचाना ही नहीं, क्योंकि जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो अंतिम जन्म में दादा लेखराज ब्रह्मा की दुकान में नौकर था, भले मैनेजर था, पहले नौकर तो हुआ ना, तो क्यों नहीं पहचाना है? क्या अहंकार रहा बुद्धि में, ये मेरा नौकर है। दुनिया में इतने गुरु गुसाई विद्वान पंडित आचार्यों वाराणसी में घूमते रहे, कहीं से भी उनकी बात का साक्षात्कार का जवाब नहीं मिला, और जिस व्यक्ति से जवाब मिला उसकी महानता को उन्होंने पहचाना ही नहीं। तो जैसे और देहधारी धर्म गुरु हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक आदि, वो इस मनुष्य शक्ति पर खुद बाप बन करके बैठ गए। क्राइस्ट तो 500 करोड़ मनुष्य शक्ति में से 200-250 करोड़ मनुष्यों का बाप बन के बैठ गया। इसको क्या कहेंगे है? 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और देह अहंकार। ये देह अहंकार इन देहधारी धर्म पिताओं से छूटता ही नहीं। इसलिए ये बाप को पहचान नहीं पाते, जीवन रहते। वो एक ही मनुष्य सृष्टि में शख्सियत है। जो मनुष्य सृष्टि के चक्र में ऑलराउंड पार्ट बजाती है, जिसके लिए गीता में बोला है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत्य होता है, सत्य होता है, उसका इस सृष्टि पर कभी अभाव नहीं होता। चार युगों की सृष्टि, खलास हो जाए, प्राणी मात्र खलास हो जाएं, मनुष्य मात्र खलास हो जाएं, शरीर छोड़ जाएं, लेकिन वो एक ही शख्सियत है, जिसके लिए हमारे भारतीय शास्त्रों में गायन है, जिसने काल को जीत लिया। इसलिए क्या कहा जाता है, कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खा जाएगा, लेकिन उसको काल के गाल में जाते हुए कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो बाप समान स्टेज धारण कर लेता है। जैसे बाप सदाशिव है, ऐसे बाप का बड़ा बच्चा भी कैसी स्टेज धारण करता है, सदाशिव। जब तक जीवन है, जब तक पुरुषोत्तम संगम युग है, तब तक वो आत्मा सदाशिव की स्टेज में स्थिर होकर रहती है, बाप की सीट पर सेट होकर के रहती है। शिव माने कल्याणकारी, एक दो का कल्याणकारी या सभी प्राणी मात्र का कल्याणकारी? सभी प्राणी मात्र का कल्याणकारी, एक मनुष्य का कल्याणकारी नहीं, 500 700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब का कल्याणकारी। और ऐसे नहीं कि आज कल्याणकारी है, जीवन रहते और कल कल्याणकारी नहीं रहेगा, नहीं। एक बार शिव समान संपन्न स्टेज प्राप्त करने के बाद जब तक संगम युग रहेगा, जब तक दूसरी पीढ़ी की शुरुआत नहीं होगी नई दुनिया में, तब तक वो आत्मा सदा शिव की स्टेज पर रह करके पार्ट बजाती है। जो हिस्ट्री में गायन है कि जो भी राजाएं हुए उन्होंने अपनी गद्दी कौन से बच्चे को दी, बड़े बच्चे को। ये परंपरा कहाँ से चलती है, संगम युग से चलती है। जब संगम युग में बाप आकर, वो बाप जो बापों का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, वो बाप इस सच रूपी रंगमंच पर जब आता है तो अपनी सीट, अपनी गद्दी किसको अर्पण करता है, बड़े बच्चे को अर्पण करता है। आत्मा आत्मा, भाई भाई, जो भी है मनुष्य सृष्टि में, उनमें जो बड़ा भाई है, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला है, इस सच रूपी रंगमंच पर सबसे पहले प्रत्यक्ष होने वाला है। कब है? 2018 में प्रत्यक्ष होगा। किसने बोला 2018 में प्रत्यक्ष होगा? अभी आपकी बुद्धि में प्रत्यक्ष नहीं है। अरे आप तो बात बदल दी आपने। तो जो बड़ा बच्चा पहले पैदा होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म पहले लेता है, वो ही बड़ा बच्चा इस मनुष्य शक्ति में त्रिकालदर्शी शिव बाप का पूरे वर्षे का अधिकारी बन जाता है। उसी की यादगार शिवलिंग है, वो हमारा बाप है, मनुष्य शक्ति का बाप है। बाप से क्या मिलता है? निराकार वर्षा मिलता है। निराकार वर्षे से संतुष्ट हो जाएंगे या साकार वर्षा मिलता है? वर्षा साकार बाप से मिलता है, पढ़ाई टीचर से मिलती है। वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है, एक ही है या अलग अलग है? इस मनुष्य शक्ति में पुरुषोत्तम संगम युग में एक ही शख्सियत है। ब्राह्मणों की दुनिया में जब से उस पुरुषोत्तम नारायण के जन्म की प्रत्यक्षता होती है, तब से लेकर और मनुष्य शक्ति के अंत तक, महामृत्यु तक, वो एक ही व्यक्तित्व है जो सारी दुनिया में मनुष्य मात्र की बुद्धि में, मन में समा जाता है। और हर मनुष्य आत्मा अंत समय में किसको याद करती है? जो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले लेती है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का साकार वर्षा चाहिए या सिर्फ ज्ञान का निराकार वर्षा चाहिए? है साकार में निराकार वर्षा चाहिए। साकार में निराकार वर्षा तो निराकारी बाप से मिलता है, उसके पास सिर्फ निराकारी वर्षा है, ज्ञान का ही वर्षा है। वो तो साफ बताता है, मैं त्रिकालदर्शी तो हूँ, तीनों काल के सत्य को तो जानता हूँ, परंतु मैं मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूँ। प्रैक्टिकल पार्ट नहीं बजाता हूँ त्रिकालदर्शी का, प्रैक्टिकल पार्ट तुम बच्चे बताते हो नंबर वार पुरुषार्थों से। तो जो बच्चा अब्बल नंबर में त्रिकालदर्शी का पार्ट बजाता है, आत्मा की संपन्न स्टेज प्राप्त करने पर उसी की यादगार शिवलिंग बना हुआ है। सवाल पैदा होता है, शिवलिंग क्यों कहते हैं, शंकर लिंग क्यों नहीं कहते? जवाब आना चाहिए या नहीं? क्या जवाब आएगा? शंकर याद के पुरुषार्थ में बैठा है, जरूर उससे भी कोई ऊंचा है जिसको याद करता है, इसलिए शंकर संपन्न नहीं है। ऊंचे थे ऊंचा इस मनुष्य शक्ति में नहीं कहा जा सकता। इस मनुष्य शक्ति में ऊंचे के ऊंचा तब कहा जाएगा जब निराकार आत्माओं का निराकार बाप, जो बार बार बोलता है कि मैं जब आता हूं तो दख से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। तो बताओ, निराकार आत्माओं का निराकार बाप आया या नहीं आया?
आया
आया, फिर दत्त से राजधानी स्थापन हुई? है
गुप्त
पाठ चल रहा है, माना बच्चा गर्भ में गुप्त है, तो कोई कहेगा कि बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा आया है? किसने किया? आज कहते हैं निश्चय बुद्धि, यज्ञ में आदि में खून से लिख लिख करके देते थे, आजकल सरकारी स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट लिख करके देते हैं, जबकि बाप ने तो बोला है कोर्ट में जाकर के एग्रीमेंट लिख दो। हमें इस सृष्टि का ऊंचे से ऊंचा बाप मिल गया, भगवान बाप मिल गया, फिर अब तक रिजल्ट क्या आ रहा है? जो इस तरह निश्चय पत्र लिख करके देते हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं जो आज निश्चय बुद्धि की जन्म लेते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि की मौत मर जाते हैं? है या नहीं है? हैं। और उनकी पहचान बता दी, ब्रह्मवाक्य मुरली में ही बता दी, बोला एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अगर दिल लगाकर औरों से भी ज्ञान सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। और जिनका यहाँ शूटिंग पीरियड में व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, तो द्वैतवादी द्वापर युग आने पर जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आएंगे तो उनकी बातें सुनेंगे, उनके फॉलोअर्स से सुनेंगे, तो कैसा ज्ञान हो जाएगा? व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये भारत की हिस्ट्री है कि भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे, दूसरे धर्म के इतने पक्के होते हैं कि दूसरे धर्म का धर्म ग्रंथ छूते भी नहीं। ये भारत मात्र देश है, माताओं का देश है, भारत माता कहा जाता है। किसी ने सुना भारत पिता है? क्या रामबेबा थी भारत माता? विधवा थी? विधवा तो नहीं थी। तो मातृ देश क्यों? क्योंकि माताओं में ये आदत होती है, सुना और फिर दूसरों को सुनाना शुरू कर दिया, सुनी सुनाई बातों पर भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। ये ब्रह्म वाक्य है, यही कारण है कि सबसे पुराना भारतीय धर्म होने पर भी आज दुनिया में जो पक्के भारतवासी हैं सनातन धर्मी, उनकी जनसंख्या संसार में ना के बराबर रह गई। क्यों? सनातन धर्म वालों की, देवी देवता सनातन धर्म वालों की संख्या इतनी कम क्यों रह गई? कारण है? हाँ, जो भी धर्म पिता आया, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, उनके सहयोगी धर्म पिता हैं, उनकी बातें सुनी और सुन करके कन्वर्ट हो गए।
माता
है? माता है? आपने तो कभी माता का जन्म ही नहीं लिया, आप तो परम पुरुष हैं, है ना? नहीं नहीं, तो माताओं के ऊपर क्यों कूद पड़े? आपने जन्म नहीं लिया माता का, फिर देवान में आ गए? आत्म की स्थिति में रहो, प्रश्न करो। तो है? गुरु नानक निर्गुण है,
हिंदू गुरु है,
हिंदू गुरु है। और शंकराचार्य सन्यासियों का गुरु, सन्यासियों का धर्म पिता, हिंदू नहीं है। और महात्मा बुद्ध हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुआ। अरे हिंदू होने से बात नहीं बनती, हिंदू हैं इसीलिए दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए। गुरु नानक का धर्म कौन सा है? सनातन तो नहीं। गुरु नानक से पहले सिख धर्म था तो फिर कलयुग ही धर्म हुआ ना। कलयुग तमो प्रधान होता है, तमो प्रधान युग में सिख धर्म का जन्म हुआ। तो बुद्धि कैसी होगी? तामसी बुद्धि होगी, सात्विक बुद्धि होगी, तामसी बुद्धि होती है। इसलिए आज भी भारत में ये बड़ी विचित्र बात है, हिंदू लोग सिखों को चिड़ा चिड़ा कर कहते हैं, क्या कहते हैं, सरदार जी अभी 12 नहीं बजे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब संगम युग के शूटिंग पीरियड में शिव बाप रामवली आत्मा के द्वारा दिन में 2 पहर जब होता है बेहद का, और तीव्र गति से संसार में वो ज्ञान फैलने लगता है, उस समय उनकी बुद्धि में बैठेगा। अभी इतनी बड़ी पब्लिक में कोई सरदार बैठा हुआ है? नहीं, ऐसे नहीं कि पंजाब से आत्माएं निकल नहीं रही हैं। पंजाबी खून की आत्माएं निकल रही हैं, लेकिन हिंदू धर्म वाले निकल रहे हैं। सिख धर्म अपनाने वाले बहुत कम हैं। ऐसे कहें जो 1-2 जन्म से कन्वर्ट हुए हैं वो ही सरदार निकल रहे हैं, नहीं तो नहीं। तो मातृ देश है या पितृ देश है? माताएं कन्याएं सुनी सुनाई बातों से ज्यादा प्रभावित होती हैं या पुरुष ज्यादा प्रभावित होते हैं? माताएं कन्या ज्यादा प्रभावित होती हैं। कारण क्या है? कारण कहां से पैदा होता है? दुनिया की हर बात का कारण पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग समय से शुरू होता है। आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु निराकार, जिसे पुरुष कहा जाता है, शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाला, भले से दुनिया पतित में आता है, पतित तन में आता है, पतितों के बीच में आता है, तो भी वो आत्मा आराम महसूस करती है या बेआरामी महसूस करती है? आरामी महसूस करती है। इसलिए वो परम पुरुष है। शरीर रूपी पुरी में पुरुष, क्षा माने शयन करने वाला, शरीर रूपी पुरी में आनंद से शयन करने वाली आत्मा है, उससे परम पुरुष और इस दुनिया में कोई होता नहीं। हाँ, वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, जिसके लिए गीता में कहा है अर्जुन से, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम्हारा ये जो शरीर है ये युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, अच्छे बुरे कर्म जो भी करेंगे, इस क्षेत्र में जो स्वाहा करेंगे, इस यज्ञ कुंड में स्वाहा करेंगे, उसका फल जरूर मिलेगा। ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है। क्या इदम शरीरम, ये जो तुम्हारा शरीर अविनाशी है सच्ची रूपी रंगमंच पर, जिसका कभी मंच पर विनाश होता ही नहीं, आत्मा तो अविनाशी है ही है, कि शरीर का भी विनाश नहीं होता, तो ये आत्मा और शरीर दोनों का जो मेल है, उससे जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का फाउंडेशन पड़ता है, वो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड में सभी मनुष्य आत्माएं आज नहीं तो कल ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बन करके अपने कर्मों को स्वाहा करने वाली है। अच्छे कर्म करेंगी तो स्वाहा होंगे, बुरे कर्म करेंगी तो भी स्वाहा होंगे। जैसे राक्षसों ने राक्षसी कर्म किया, हत्याएं की और हड्डियां यज्ञ कुंड में डाल दी, तो अच्छा कर्म किया या बुरा कर्म किया? बुरा कर्म किया, तो उनको इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड चलता है, उस यज्ञ कुंड में उनको कहीं न कहीं फल जरूर मिलना है, अच्छे कर्मों का भी फल मिलना है और बुरे कर्मों का भी फल मिलना है। ये शरीरधारी अर्जुन ये यज्ञ पिता है, गीता में बोला, संस्कृत गीता में, कैसा यज्ञ पिता है, जिसके लिए गीता में एक शब्द आया है परमात्मा, परमात्मा इति उदाहत, ये परमात्मा कहा जाता है। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में ये परमात्मा है, परम पार्टधारी है, परे से परे पार्ट बजाने वाला। इस हीरो पार्टधारी के पार्ट को कोई क्रॉस करके नहीं रह सकता। इसलिए गीता में तीन प्रकार की आत्माएं बता दी, एक क्षर, दूसरी अक्षर, और जो क्षर आत्माएं हैं, क्षरित होने वाली, जिनकी शक्ति क्षीण होती रहती है, उनमें भी एक विशेष आत्मा है, जिसको कहते हैं परमात्मा इति उदाहत। इसलिए जब भी हम परमात्मा शब्द बोलते हैं तो परमपिता के बाद ही बोलते हैं, ऐसे कभी नहीं कहेंगे परमात्मा परमपिता। क्या कहते हैं? परमपिता परमात्मा कहते हैं। जैसे शिव शंकर, कभी कहते हैं शंकर शिव, क्यों? पहले बाप बड़ा होना चाहिए, बाद में छोटा होना चाहिए। तो परमपिता पहले और परमात्मा बाद। तो देह अभिमानी मनुष्यों ने खास करके सन्यासियों के धर्म पिता शंकराचार्य ने देह अभिमान में आकर के ये परंपरा चला दी, आत्मा सो परमात्मा। और जो आत्मा ज्यादा बुद्धिमत्ता का परिचय दे वो तो पक्का परमात्मा हो गई। माना हरेक आत्मा क्या हो गई? परमात्मा हो गई। तो टाइटल ले लिया शिवो अहम। इस मनुष्य सृष्टि में शिव स्वरूप मैं हूं, मेरे मुकाबले और कोई धर्म पिता सबका बाप नहीं हो सकता। और ये प्रैक्टिकल में उन्होंने भारत में करके भी दिखाया। भारत में जो और धर्म फैल रहे थे, इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था, भारत के चारों कोनों में घूम करके क्या कर्म किया?
आत्मा सो परमात्मा।
आत्मा सो परमात्मा। तो क्या सारे भारत में उन्होंने सब धर्म पिताओं के सामने, सर्व धर्म पिताओं के फॉलोअर्स के सामने ज्ञान का डंका नहीं बजा दिया? उनका मुकाबला किसी ने किया? ज्ञान की बातों में कोई मुकाबला किया? क्या किया? नहीं किया। जैसे परम पिता परमात्मा शिव संगम युग में जब आते हैं तो त्रिमूर्ति के रूप में आते हैं, ब्रह्मा की मूर्ति के रूप के सामने दुनिया का कोई भी धर्म का धर्म पिता हो, धर्मात्मा हो, बड़ा विद्वान पंडित आचार्य हो, कोई ने भी उनका सामने आके मुकाबला किया? नहीं किया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना के बाद, उनके शरीर छोड़ने के बाद दूसरी मूर्ति आती है शंकर द्वारा विनाश। वो 40 वर्ष भी ब्रह्मा महावाक्य के अनुसार पूरे हो रहे। तो इन 40 वर्षों में, जैसे ब्रह्मा के 40 वर्षों में 36-37 से लेकर 76 तक कोई मनुष्य मात्र उनका मुकाबला नहीं कर सका, ऐसे ही इन 40 वर्षों में इस दुनिया का कोई भी धर्म पिता सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकता। उनकी तो बात छोड़ दो, दुनिया वालों की, दुनिया वालों से निकल करके ब्रह्मा कुमार और कुमारी जो बने, उनको दुनिया का कोई भी धर्म का फॉलोअर तोड़ नहीं सकता, तोड़ ही नहीं सका। तोड़ सका क्या? नहीं तोड़ सका। सामने आकर के मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे ही उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से जो निकले हुए सारी सभा बैठी हुई है ब्राह्मणों की, उनको तोड़ करके कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी बना सकता है जीवन भर के लिए? बनाया है? नहीं बना सकता। क्योंकि ये शास्त्रों में विख्यात है और बाबा ने भी बोला है, ब्रह्मा देव, विष्णु देव और फिर देव देव महादेव। ब्रह्मा को महादेव का टाइटल नहीं है, विष्णु को महादेव का टाइटल नहीं है। देवताएं तो दोनों हैं, लेकिन महादेव का टाइटल नहीं। तो जो महादेव है वो ही एक शख्सियत है इस मनुष्य सृष्टि में, जिसका माता पिता नहीं गाया हुआ है, जिसको जन्म देने वाला कोई हुआ ही नहीं साकार में, उसका किसी ने जन्म नहीं देखा, उसकी किसी ने मृत्यु नहीं देखी। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है, तुम अच्छ विश्वस्य परम निधानम। तो इसे साबित हुआ कि मनुष्य सृष्टि का जो पिता है प्रजापिता, वो इस मनुष्य सृष्टि में जो दुनिया में बड़े बड़े ज्योतिषी माने गए हैं, उनकी वाणी के अनुसार भी कहीं गुप्त रूप में कार पार्ट बजाए रहा है और वो भारत में ही प्रत्यक्ष हो सकता है। दुनिया का और कोई देश नहीं है, लेकिन भारत देश मात्र देश क्यों है जिन माताओं की आज दुनिया में दुर्गति हो रही है। आज की दुनिया पुरुष प्रधान है या मातृ प्रधान है, किसकी ज्यादा चल रही है? कोई भी धर्म में जाओ, कोई भी देश में जाओ, ज्यादा सत्ता पुरुषों के हाथ में है कि ज्यादा सत्ता कन्याओं माताओं के हाथ में है? पुरुषों के हाथ में। और भारत को मातृ देश कहा गया, इसलिए वो भारत की माताएं द्वैतवादी द्वापर युग आते आते दूसरे दूसरे धर्म पिताओं की सृष्टि में आते आते इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक के आते आते वो माताएं उनके धर्मों में उन धर्मों में कन्वर्ट हो गई, भारत माताएं जो कही गई। हम सबने माता के रूप में जन्म लिया है, तो मातृ प्रधान देश क्यों कहा गया? इसका फाउंडेशन कहां से पड़ा है? संगम युग में कब पड़ा? बाप आते हैं माताओं की वंदना करते हैं, तो कौन सी माता की वंदना करते हैं है? अरे उनमें भी नंबर आ रहे हैं कि सब 100 नंबर है। अब बल नंबर गाया जाता है या परसेंटेज वाले भी गाए जाते हैं? कौन है, है? कौन है भारत माता है? लक्ष्मी माँ भाई। तो फिर शिव के मंदिर में जो पूजा होती है उसमें शिवलिंग को त्वमेव माता च पिता क्यों कहते हैं? फिर तो लक्ष्मी का चित्र वहां रख दो, शिवलिंग उखाड़ के फेंक दो है?
है?
हाँ जी, जिस मुकर्रर रथ में आता है तो सोचा समझा हुआ आता है, या उस मुकर्रर रथ में आने के लिए उसे मनन चिंतन मंथन करना पड़ता है? मनन चिंतन मंथन करना पड़ता है। उसको मन है? जब उसको मन ही नहीं है तो मनन चिंतन मंथन कैसे करेगा? मननात् मनुष्य, जिसको मन होता है वो मनुष्य कहा जाता है, और मनुष्य मनु की औलाद है, जैसे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद, वैष्णव विष्णु की औलाद, शैव शिव का फॉलोअर। उसी अर्थ में जो मनुष्य हैं इस सृष्टि पर, मनुष्य मात्र आखिरीन किसकी औलाद हैं? जब सृष्टि शुरू हुई तो किसकी औलाद थे है? ब्रह्मा की औलाद। तो वो ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा तो एक का नाम नहीं है, ब्रह्मा तो विष्णु है। जिस मनुष्य सृष्टि में मुकर्रर मनुष्य तन का आधार लेता है, मुकर्रर आत्मा उसकी बुद्धि में, शिव की बुद्धि में पहले से है या नहीं? क्यों? क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है नहीं। वो त्रिकालदर्शी शिव इस सृष्टि पर आता है जब उसका टाइम होता है। क्या जो भी पुरुष मात्र यहाँ बैठे हुए हैं वो याद करें अपने जीवन को, अगर कुमार हैं तो कौन सी पहली रचना रची परिवार बनाने के लिए, माता की रचना रची। ये परंपरा भी कहां से पड़ी, शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो ये परंपरा डालते हैं। इसलिए गीता में लिखा हुआ है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व, इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं वो मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। मैंने जो परंपरा डाली है, श्रेष्ठ परंपरा डाली है, उस परंपरा का सभी मनुष्य मात्र आगे पीछे अनुगमन जरूर करते हैं। तो ये परंपरा पड़ गई दुनिया में क्या, कि जो भी पुरुष रूप में है, स्त्री रूप में नहीं, पुरुष रूप में है, कुमार है, कुमार नौजवान बनता है तो उसमें कौन सी इच्छा जागृत हो जाती है,
काम विकार।
इस दुनिया में हमेशा काम विकार नहीं होता, होता है सत्युग देवता में होता है नहीं, लेकिन इच्छा जागृत वहां भी होती है। जब नौजवान होता है तो इच्छा जागृत होती है, नौजवान होने पर क्या चीज उस पुरुष के अंदर नई तैयार हो जाती है जो उसे उसके अंदर इच्छा जागृत कर देती है। अरे हाँ नहीं बताएंगे, अरे बता दो, कुमार तो सभी बने हैं, अदर कुमार तो बने ही हैं, कुमार जो कुमार हैं वो भी जानते हैं हा? अरे वो इच्छा जागृत करने का कारण क्या हुआ, शरीर के अंदर कोई कारण है कि नहीं, जो कारण शैशव अवस्था में नहीं था, किशोर अवस्था में नहीं था, नौजवान होना शुरू हुआ तो वो टाइम आ गया क्या है? ऊर्जा मैंने बच्चों में ऊर्जा नहीं होती है, जो शैशवावस्था में होते हैं और जो बच्चे छोटे कुमार होते हैं जिन्हें किशोर कहा जाता है उनमें ऊर्जा नहीं होती है। तो बताओ क्या चीज है? अरे नहीं बताएंगे, बहुत प्यारी चीज होती है, उसे छुपा के रखा जाता है। बता दो नहीं माताओं से पूछेंगे है? हाँ शादी करने की इच्छा वो क्यों पैदा हो गई किशोर में और शैशवावस्था में, वो इच्छा क्यों नहीं होती है? हाँ जो असली सत्व है जब परिपक्व स्टेज आती है तब ही तैयार होता है। जैसे वो परम पुरुष है उसका भी टाइम है, 5000 वर्ष पूरे होंगे और वो रह नहीं सकता, उसको माता चाहिए। उस सत्य को, उस सच्चाई को, उस सत्य को वो धारण करके नहीं रह सकता, उसे आधार चाहिए। इसीलिए वो आधार लेने के लिए पुरुषों को क्या बोला, सब पुरुष क्यों क्यों दुर्योधन दुशासन है, किस लिए? सत्य को त्रेता में होता है विकास, तो फिर वहां क्या पुरुष नहीं होते? फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र में देखो, राधा कृष्ण नीचे खड़े हुए हैं बच्चे के रूप में, नहीं वो सात्व की स्टेज है, सत्य की, सत्व की सात्व की स्टेज ज्ञानेन्द्रियों से होती है, तामसी स्टेज भ्रष्ट इंद्रियों से होती है। ये भ्रष्टाचारी धर्म जब से आए हैं तब से भ्रष्ट इंद्रियों का उपयोग करना शुरू कराया है, द्वैतवादी द्वापर युग से, जिन्होंने आकर के दो दो धर्म, दो दो धारणाएं, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें इस दुनिया में पैदा कर दी, दो से चार, चार से आठ, मत मतांतर बढ़ते ही चले गए। ये सत्य का बिगड़ा रूप है, तो जो परम पुरुष है उसमें भी 5000 वर्ष का ड्रामा जब पूरा होता है तो वो सत्य का तीनों काल का जो ज्ञान है परिपक्व हो जाता है, वो परम पुरुष उसे धारण करके नहीं रह सकता, उसे माशूका चाहिए। बोलो, हर नौजवान को माशूका चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, तो वो परंपरा कहां से शुरू हुई, किसने शुरू की? परम पुरुष ने शुरू की। वो इस सृष्टि पर आता है, उसे विचार नहीं करना पड़ता, वो जानता है ऑलरेडी त्रिकालदर्शी होने के कारण, और उसी मुकर्रर शरीर में प्रवेश कर जाता है। जिसमें भी आता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो बताओ, मनुष्य सृष्टि का जो मूल है वो ही ब्रह्मा हो गया, माता का रूप हो गया, तो फिर मनुष्य सृष्टि में कोई आत्मा बचेगी? खास करके भारत में कोई बचेगी नहीं। जो भी भारतवासी हैं, जिन्होंने भी सतयुग त्रेता में जन्म लिए हैं, वो आत्माएं माता का पार्ट विशेष बजाने वाली बनती हैं। मातृ देश हुआ, और भले मनुष्य सृष्टि का पिता है, उसमें भी सुनी सुनाई बातों का असर होता है या नहीं होता है?
होता है,
होता है। भले बाप ने बताया, तुम बच्चों को सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इसका मतलब बच्चों को विश्वास होता है या नहीं होता है? विश्वास होता है या नहीं होता है? विश्वास होता है, ये टेंडेंसी है बच्चों की, भारतवासी बच्चों की। इसलिए चाहे प्रजापिता वाली आत्मा ही क्यों न हो, वो भी इस मनुष्य शक्ति में सुनी सुनाई बातों के चक्कर में आती है या नहीं आती है? आती है। हाँ हाँ, ये बात जरूर है कि पहले जो स्वर्ग गाया हुआ है, उस स्वर्ग में जो माता के रूप में विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो पहले प्रभाव में आएगी और बाद में वो प्रभाव में आएगा। जो दूसरे धर्मों में भी मान्यता है कि अल्लाह मियां ने जन्नत रची, उस जन्नत में एडम और ईव को भेजा और हिदायत दी कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद वो इस हिदायत को भूल गए और क्या हुआ है? किसके कहने पर? ईव के उकसाने पर। पहले ईव आती है, जगत माता प्रभाव में आती है। किसके प्रभाव में? प्रीता के अंतिम जन्म में जो जगदम्बा कही जाती है, वो जगदम्बा ईव माया बेटी के प्रभाव में पहले आती है। शूटिंग यहाँ होती है कि नहीं है? अब दत्तवाणी में क्या बोला? माया तुम बच्चों के योग से तंग आ गई है। बोला या नहीं बोला? फिर माया ने क्या किया, क्या हथकंडा अपनाया है? माया ने प्रकृति जो जड़त्वमयी होती है, क्या पहली रचना है परम पुरुष की? पुरुष की पहली रचना क्या है? है प्रकृति, प्रकृष्ट कृति माने रचना। प्रकृष्ट रचना पुरुष की पहली माता। कोई भी पुरुष अपनी सारी शक्तियां, एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी शक्ति किसमें त्रोहित कर देता है? है माता में त्रोहित कर देता है। तो ऐसे ही वो परम पुरुष है, उसने अपने ज्ञान की, सत्य की, सत्व की सारी शक्ति किसमें त्रोहित कर दी? है, है? परम ब्रह्म में। परम ब्रह्म रूपी पुरुष में आकर के उसका नाम देता है ब्रह्मा। अपना कार्य कराना है तो जैसा नाम वैसा काम देगा। जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा में आया है तो पुरुष तन, नाम क्या दिया है? ब्रह्मा नाम दिया ना। ऐसे ही जो अब्बल नंबर ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा को नाम देता है क्या? परम शब्द बोलता नहीं, लेकिन पहली पहले प्रवेश किया है तो पावरफुल पहली माता होगी। या बाद में पुरुष जो शादियां करता है उनको प्रियोरिटी देता है। भारत में क्या परंपरा है? बाबा ने भी बोल दिया, पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी जूती लेते हैं, तीसरी जूती लेते हैं, चार चार शादियां कर लेते हैं। तो पहली माता से जो संतान पैदा होती है, वो वर्षे की ज्यादा हकदार बनती है या बाद वाली माताओं की संतान ज्यादा हकदार बनती है? हैं? पहली माता की संतान ज्यादा हकदार बनती है, यही परंपरा आज भी चल रही है। षष्ठी में भी ये परंपरा है, जो पहली माता से बच्चे पैदा हुए वो सूर्यवंशी बच्चे हैं। क्या? दूसरी माता से जो बच्चे पैदा होते हैं वो चंद्रवंशी बच्चे हैं। सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये परमपिता परमात्मा के बनाई हुई वो सृष्टि है जो स्वर्ग भोगती है। चंद्रवंशियों में जो कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी बन जाते हैं, उसी पुरुषार्थी जीवन में जैसे लक्ष्मी और लक्ष्मी के सहयोगी, वो सब कौन से वंश के हो गए? सब सूर्यवंश के हो गए। इसलिए भारत में परंपरा आज भी है कि स्त्री नीचे कुल से आती है या ऊंचे कुल से आती है? हैं? नीचे कुल से आती है, फिर भी पति के कुल में आकर पति का कुल कहा जाता है या बाप का कुल कहा जाता है? पति का कुल कहा जाता है। ये परंपरा है जो सृष्टि के आदि से अब तक चली आ रही है भारत में। तो बताया कि उन पार्टधारियों के पार्ट को तुम बच्चे जानते होगे, परंतु अभी तुमको थोड़े में जानना होता है। शुरू शुरुआत में पहले पूरा ज्ञान दे देंगे या जैसे जैसे परिपक्व बुद्धि होती जाएगी वैसे ज्ञान देंगे? तो बाप भी थोड़े में आकर के समझाते हैं प्रकृति का राज, और प्रकृति के साथ साथ माया का भी राज समझाते हैं। क्या? सत्युग त्रेता में प्रकृति होती है या नहीं होती है? हैं? होती है, लेकिन सात्विक और सतो सामान्य रूप में होती है। दुखदाई? दुखदाई नहीं होती। और द्वैतवादी द्वापर युग से प्रकृति दुखदाई होती है। क्यों? हैं? किसके संग के रंग से तमो प्रधान बनी? हैं? कौन आत्मा निमित्त बनी? कौन? अरे अभी तो बाबा ने बताया उन आत्मा रूपी पार्टधारियों के पार्ट को तुम बच्चे जानते होंगे ना, तो किसके संग के रंग से प्रकृति जो है वो तामसी बनने लगती है, राजसी बनने लगती है, नीचे गिरने लगती है? अभी तो बताया। अरे बाबा ने ही बता दिया। क्या बता दिया? माया तुम बच्चों के योग बल से तंग आ गई है। माया बेटी है ना, तंग आ गई, तो उसने तरीका अपनाया। क्या तरीका अपनाया? कि बाप की जो सहयोगिनी शक्ति है प्रकृति, उस प्रकृति से हाथ मिला लिया। तो किसका संग मिल गया? सब प्रकृति को माया का संग मिल गया। माया का अर्थ ही है मां माने नहीं, आया माने आया। वो जीवन में ना आया होता, ना आई होती तो अच्छा था, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार आ गई। तो बाप माया का भी राज समझाते हैं, संपत्ति का भी राज समझाते हैं, और सहज सहज समझाते हैं। कोई कोई भी कहो, जो मिले उसको कहो। अभी संगम युग चल रहा है, चारों युगों की शूटिंग का टाइम चल रहा है, निराकार आत्माओं का निराकार बाप डायरेक्टर के रूप में पर्दे के पीछे पार्ट बजा रहा है। डायरेक्टर सामने होता है एक्टर्स के, ऑडियंस के, या पर्दे के पीछे होता है? पर्दे के पीछे पार्ट बजा रहा है। उन्होंने तो गीत बना दिए फिल्म वालों ने, सबको नाच नचाता आ जाता, फिर भी नजर नहीं जो आता। ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? गीत बनाने वाले ये जानते ही नहीं ऐसी दुनिया कब बनाई थी। वो अभी संगम युग में दुनिया बना रहा है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र गुड्डे गुड़ियों की तरह पार्ट बजाने वाले हैं। जो कहावत है, तेरी सत्ता के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं, ये मनुष्य सृष्टि के मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जिसका वर्णन गीता में कहा गया, ऊढ़म मूलम मदस्या का, उस सृष्टि रूपी वृक्ष के 500-700 करोड़ पत्ते हैं। एक टाइम ऐसा भी आएगा क्या, वो पत्ते उसकी इच्छा के बगैर हिल भी नहीं सकते। ऐसी सारी दुनिया मिलिट्री बन जाएगी, रूहानी मिलिट्री। मिलिट्री में क्या होता है, मिलिट्री अपनी अकल चलाती है या मिलिट्री का मार्शल अकल चलाता है? मार्शल अकल चलाता है। हम बच्चों की जो रूहानी मिलिट्री है, हम ज्योति बिंदु रूपी आत्मा जो ब्रकुटी के मध्य में बैठी हुई है, जिनकी यादगार बिंदी या टीका लगाया जाता है, लगाते हैं ना, वो ज्योति बिंदु रूपी आत्मा रूपी बच्चे, हम जान गए हैं कि हम देह नहीं हैं, हम क्या हैं? हम आत्मा हैं। और हम आत्मा अभी शिव बाप से वर्षा ले रहे हैं। काय का वर्षा ले रहे हैं? किस बात का वर्षा ले रहे हैं? शिव बाप से हैं? हाँ, जिस बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, वो त्रिकालदर्शी होने के कारण, जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण क्या है, त्रिकालदर्शी होने के कारण, जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण क्या है, अखूट ज्ञान का भंडार है, जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम् यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। वो पूर्ण है, पूर्ण ही रहेगा। उस पूर्ण में से पूरा ही कोई निकाल ले तो भी पूरा ही बचेगा। ऐसा वो आत्माओं का निराकार आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को बता रहा है कि मैं तुम बच्चों को आप समान क्या अखूट ज्ञान का भंडारी बनाकर जाऊंगा। तो सब बच्चे बनेंगे या नहीं बनेंगे? सब बच्चे अखूट भंडारी बनेंगे है? अरे जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ही बनेगा ना। और पुरुषार्थ क्या बताया? मत मना भव, मेरे में मन लगा दे। माने मन की जो संकल्प शक्ति है, जो मेरे मन में संकल्प चल रहा है, वही संकल्प शक्ति, वही संकल्प तेरे मन में चलना चाहिए। अगर कोई दूसरा संकल्प चलता है, विरोधी संकल्प चलता है, तो मनमना भव हुआ या नहीं हुआ?
हाँ,
नहीं हुआ। सारी दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र महामृत्यु के समय तक कैसी स्टेज प्राप्त कर लेंगे? मनमना भव की स्टेज प्राप्त कर लेंगे। कौन कहता है मनमना भव? मेरे मन में समा जा, अरे वो षष्ठ रूपी वृक्ष का चित्र बताया हुआ है, साक्षात्कार से बनाया हुआ। उसमें ऊपर कौन बैठा है? शंकर बैठा हुआ है, नग्न रूप में बैठा है, या कपड़े पहनकर बैठा है? नग्न रूप में बैठा है। वो नग्न रूप ही शिवलिंग है, जिसको कभी कपड़े नहीं पहनाए जाते। क्या आत्मिक रूप में स्थिर हो गया, उसको हाथ पांव नाक आंख कान वाला शरीर रूपी वस्त्र है ही नहीं। वो एक ही आत्मा है जो शिव बाप का बड़ा बच्चा है। वो बड़ा बच्चा जिसके लिए बीसियों बार ब्रह्म वहां वाक्य मुरली में आया है, क्या ब्रह्म वाक्य आया है? नैनो पर तुम बच्चों को बिठा कर ले जाऊंगा। माने बच्चे बहुत हैं और बाप एक है, उसको नैन है, जो निराकार है, आत्मा निराकार का बाप, उसको नैन है, इंद्रियां हैं, शरीर है नहीं, वो तो इंद्रियातीत है, वो सिर्फ बुद्धि है, बुद्धिमानों की बुद्धि, उसको अपना मन भी नहीं है, मन भी ग्यारहवीं इंद्रिय है। जो बुद्धिमानों की बुद्धि शिव है, वो इंद्रियातीत है, मन से भी अतीत है, जो ग्यारहवीं इंद्रिय सबसे प्रबल इंद्रिय है। वो कहता है मैं तुम बच्चों को आप समान त्रिकालदर्शी बना कर ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा? कहाँ ले जाऊंगा? है बच्चे बिगड़ जाते हैं, मान लो विदेश में चले गए कोई बच्चे है, और वहां जाकर के बिगड़ गए। बिगड़ते हैं कि नहीं है? वैश्याओं के पीछे पड़ जाते हैं, लंपट बन जाते हैं, और बाप को पता चलता है। तो अगर पावरफुल बाप है तो क्या करेगा है? क्या करेगा है? खींच के ले आएगा। ऐसे ही ये बाप भी ऐसा समर्थ बाप है। कैसा है? हाँ, इस मनुष्य सृष्टि में जो पहला बड़ा बच्चा है उसको तो पहले पकड़ता है और क्या बनाता है? आप समान अखूट ज्ञान का भंडारी बनाता है। जब तक इस सच रूपी रंगमंच पर तुम्हें पार्ट बजाना है इस शरीर से, तब तक तुम अकूट भंडारी बन करके रहोगे। और जिसको अकूट भंडारी बनने का सीट मिल जाए तो वो सबसे दुनिया में पावरफुल हो जाएगा या नहीं होगा? क्योंकि गीता में भी लिखा है नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। और ब्रह्मवाक्य मुरली में भी बताया कि दुनिया के सारे काम बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, अच्छे से अच्छे और खराब से खराब, नई दुनिया की राजधानी स्थापन करने का अच्छे से अच्छा काम और सारी पुरानी दुनिया का, तामसी दुनिया का विनाश का काम कौन सी ताकत से होता है? पवित्रता की ताकत से होता है। किसके द्वारा विनाश गाया हुआ है? है? शंकर द्वारा विनाश। शंकर तो विष पीता है, विष पाई है, विष तो पराई स्त्री को कहा जाता है, पराई स्त्री पर पुरुष को जो भोग करता है उसे विष कहा जाता है, विष पीता है। तो शंकर तो बड़ा विष पाई है तो पवित्र है। अरे विष पाई है तो पवित्र है? अरे मंदिर में जाके देखो ना क्या कर रहा है, कहाँ बैठा हुआ है? अरे जलाधारी में बैठा हुआ है। जलाधारी नाम क्यों दिया है? हाँ, जब बेहद के ब्राह्मण हैं, बेहद की आत्मा बनते हैं संपन्न, तो बेहद ज्ञान जल की बात है। और जब हद के मनुष्य बनते हैं तो स्त्री रूप में बहने लगती है, लिक्विड के रूप में बहती है तो जलाधारी हुई, और बेहद के अर्थ में ज्ञान के आधार पर नदी बन करके बहती है। जैसे भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी मानी जाती है जिसमें बहुत जल है? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मा की पुत्री, ब्रह्मा चंद्रमा, तो उसकी पुत्री कौन से वंश की हुई है? चंद्रवंशी। तो शास्त्रों में दिखाया कि राधा चंद्रवंशी और कृष्ण सूर्यवंशी का, तो वो राधा वाली आत्मा जो है उसमें इतना पवित्रता का भंडार है प्रैक्टिकल जीवन में कि वो ज्ञान का बड़ा नद नद कहा जाता है। कहाँ से निकलता है? पहाड़ की ऊंची स्टेज से निकलता है या नीचे पहाड़ से निकलता है? उसमें भी जिसे ज्ञान मान सरोवर कहा गया है, क्या कहा गया? पहाड़ की ऊंची स्टेज पर भी जो ज्ञान मान सरोवर कहा जाता है उस ज्ञान मान सरोवर से निकलने वाली नदी है। जो ज्ञान मान सरोवर जल में इतना स्वच्छ है ज्ञान जल में कि ऊपर से देखो तो नीचे का तल्ला पत्थर भी दिखाई देता है, मिट्टी के कण का अंश मात्र भी उस जल में नहीं है। मिट्टी माने देह वाहिनी की मिट्टी। ऐसी आत्मा के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है ज्ञानमान सरोवर, वो कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई होगी या नहीं होगी? है? होगी, कौन है? है? प्रजापिता राम वाली आत्मा, जो मुरली में 20 बार बोला राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं, इसलिए कृष्ण 16 कला संपूर्ण को सतयुग में दिखाया है। लेकिन वो ही कृष्ण संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में जब चारों युगों की शूटिंग का पार्ट चलता है, रिहर्सल का पार्ट चलता है, तो द्वापर युगी शूटिंग के अंत में प्रत्यक्ष होता है जेल के अंदर। क्या जेल से स्वतंत्र होता है या नहीं होता है? जिसकी यादगार मनाते हैं 15 अगस्त, क्या आज से कितने साल पहले 15 अगस्त और जन्माष्टमी एक ही दिन हुए थे? 98 में। अभी फिर वही दिन आ गया। वो ही स्वतंत्रता दिवस आ गया। जबकि प्राय ऐसा होता नहीं है। ये दो बार जन्म क्यों गाया गया शास्त्रों में? क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र तो ब्राह्मण ही होंगे ना, है? जो बड़ा पुत्र होगा वो पहले पक्का ब्राह्मण बनेगा या यज्ञोपवीत धारण करने के बाद पक्का ब्राह्मण बनेगा, है? क्या मान्यता है भारत में? हाँ, ब्राह्मण का बच्चा जब यज्ञोपवीत धारण करे तो पक्का ब्राह्मण, नहीं तो तब तक पक्का ब्राह्मण नहीं माना जाता। शादी भी करेंगे तो क्या करेंगे? पहले यज्ञोपवीत धारण कराएंगे। यज्ञोपवीत का मतलब क्या है? 3 सूत्र हैं, ब्रह्मा का सूत्र ज्ञान सूत्र, विष्णु का ज्ञान सूत्र और शंकर का ज्ञान सूत्र। ये तीनों ज्ञान सूत्र जब संपन्न स्टेज में तीनों आत्माएं एक हो करके एक जगह ब्रह्मफास बंधती है, गांठ बनती है, तो उसको कहते हैं ब्रह्मफास। परम ब्रह्म में फंस गए। यज्ञोपवीत ऐसा धारण करें वो ब्राह्मण जिनको बुद्धि में पक्का बैठ जाए कि त्रिमूर्ति शिव की वो मूर्ति कौन सी जो स्थापना का कार्य कराती है। पहले पहले ब्राह्मण धर्म की स्थापना और बाद में राजधानी की स्थापना, क्योंकि जो पक्के ब्राह्मण होते हैं वो देवता कहे जाते हैं। इसलिए आज भी भारत में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? ब्राह्मण देवता ही नाम कहा जाता है। आज के ब्राह्मण कोई देवता नहीं है। सुख देने वाले को देवता कहा जाता है। वो ऊंची स्टेज बताई गई संगम युग की ब्राह्मणों की, जब वो पक्के ब्राह्मण बनते हैं नई राजधानी में और देवता कहे जाते हैं, देवतुल्य कहे जाते हैं। वो देवात्माएं तीनों रूपों को समझ लेती है। ब्रह्मा के रूप में जिसकी बुद्धि में क्या बैठ गया कि मैं जाकर के स्वर्ग में जन्म लूंगा, स्वर्ग की हरियाली बुद्धि में बैठ गई। इसलिए एक कहावत है, श्रावण के महीने में श्रावण की हरियाली के बीच कोई अंधा हो जाए तो जीवन भर उसे क्या दिखाई देता है? हरा ही हरा दिखाई देता। इसलिए ब्रह्मा बाबा तो अपने जीवन भर है उसी खुशी में रहे। मैं स्वर्ग का जाकर के प्रिंस बनूंगा, उसके बाद ब्राह्मण धर्म की जब स्थापना हो गई, ब्रह्मा कुमार कुमारी संसार में फैल गए, ज्यादा पावरफुल धर्म पिता होगा तो संसार में जल्दी से फैल जाएगा या धीरे से फैलेगा? जल्दी से फैल जाएगा। सन 47 से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ब्रह्मा द्वारा स्थापन हुआ और 69 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। 21 साल के अंदर इतनी पावरफुल संस्था बन गई कि आज दुनिया के सभी देश विदेशों में वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खुले हुए, भले शास्त्रों में गाए हुए नवकुरी के ब्राह्मणों में से अब्बलकुरी के वो ब्राह्मण नहीं है सूर्यवंशी, क्या जो सूर्यवंशी ब्राह्मण होते हैं वो वहां से टूट टूट करके एडवांस पार्टी में आते जा रहे हैं। यहां जितने भी बैठे हैं कोई ऐसा हो जो समझता हो कि हम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से होकर नहीं आए हैं, हम तो डायरेक्ट आए हैं, वो अच्छी तरह से समझ लें कि पूर्व जन्म में वो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर जरूर रहे। अगर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर भी नहीं रहे, कोई 80 साल का बुढ़ा हो वो कहे हम तो 80 साल के हो चुके, ब्रह्मा कुमारियों का जो पहला संगठन है ओम मंडली, उस समय तो नाम निशान भी नहीं था, हम तो एडवांस ज्ञान ले रहे हैं। तो उन आत्माओं को भी ये समझ लेना चाहिए कि वो आत्माएं यज्ञ के आदि में ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच में नहीं रही हो भले, लेकिन राम वाली आत्मा के संसर्ग संपर्क में संबंध में आखिरी जन्म में जरूर आई होंगी। अगर ना आई होती तो यहां एडवांस ज्ञान नहीं ले सकती। तो ब्रह्मा की मूर्ति का ज्ञान, ब्राह्मण धर्म जब स्थापन हो गया फिर क्या चाहिए, पक्का ब्राह्मण सो देवता धर्म स्थापन हो गया, पक्का देवता धर्म है तो राजधानी होगी या नहीं होगी। जिस पक्के ब्राह्मण धर्म के लिए बोला तुम बच्चों का ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पक्का हो जाएगा जिसमें एक भी विकारी संग दोष में आने वाला, विकारी हाथों का भोजन खाने वाला, सीमत के बरखिलाफ कर्म करते हुए कमाई करने वाला अथवा संग दोष अन्न दोष में किसी भी प्रकार से आने वाला इस ब्राह्मणों के संगठन में बैठ नहीं सकेगा, आएगा ही नहीं, इतना पावरफुल संगठन तुम्हारा बन जाएगा। और दुनिया की जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, बड़े बड़े राज्याधीश हैं, वो दूसरे छोटे भी देश हों बड़े देश हों उनको जीतने के लिए पहले क्या करते हैं, वहां अपने जासूस घुसेड़ते हैं कि नहीं, बोलो है, जासूस घुसेड़ते हैं। ओसामा बिन लादेन का जो संगठन था इतना गुप्त था, उसको भी पकड़ने के लिए वहां जासूस घुसेड़ दिए, जासूसी पहले कर ली पक्की और फिर आक्रमण कर दिया, जासूसी का मौका ही न मिले किसी को। जो ब्राह्मण है इतने पक्के हो जाएं कि अपने संगठन की बात को बाहर जाने ही न दें। जैसे 23 जुलाई की लास्ट संदेश में अव्यक्त वाणी में गुलजार दादी के मुख से ब्रह्मा की सोल ने बोला क्या, जो तीसरा रथ है उसकी आवाज संसार में जानी चाहिए, क्या चाहे टेप रिकॉर्डर के द्वारा, चाहे रेडियो के द्वारा, चाहे टीवी के द्वारा, टीवी चैनल के द्वारा, चाहे वीडियो के द्वारा, आवाज जानी चाहिए लेकिन रथ को प्रत्यक्ष नहीं करना है। तो ये डायरेक्शन दिया गया। डायरेक्शन देने का मतलब क्या है, जरूरत क्या है, है? जरूरत ये है कि लीकेज करने वाले बच्चे हैं जो बाप को गुप्त नहीं रहने देते, बाप को पहचाना नहीं है, संशय बुद्धि है। और गीता में आया है संशय बुद्धि विनश्यते, वो ठहर नहीं सकेंगे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में, राक्षसी कुल में चले जाएंगे। तो बोला ये ब्राह्मणों का संगठन पक्का करना है तो एक बात जरूर पक्की करनी है। क्या क्या? कि बाप का रथ है प्रत्यक्ष नहीं करना है। आवाज सारी दुनिया में पहुंचनी चाहिए, जितना हो सके सारी दुनिया में बाप की आवाज को बुलंद करते रहो। लेकिन लेकिन रथ को प्रत्यक्ष नहीं होने देना। अरे रथ को प्रत्यक्ष नहीं होने देंगे, जिस रथ के बारे में 76 में बोल दिया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, तो रथ के आधार पर प्रत्यक्षता वर्ष या बिना रथ के प्रत्यक्षता वर्ष है? रथ के आधार पर तो 500-700 करोड़ की दुनिया उस रथ रूपी बड़े रूप को याद कैसे करेगी? बाबा को तो डायरेक्शन है, शिव बाप का क्या डायरेक्शन है? साकार और निराकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। इसमें साकार रूप है बाबा, ग्रैंडफादर। मैं तो आत्माओं का सिर्फ बाप हूँ, ग्रैंडफादर नहीं, कोई संबंध मेरा नहीं है दूसरा। किसका? सुप्रीम सोल शिव का। मैं जिसमें मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूँ, क्या जो अर्जुन का रथ है वो रथ ही है जिसके साथ अनेक प्रकार के संबंध जुड़ते हैं, उसमें बाबा का संबंध भी है, ग्रैंडफादर। जो भारत में खास गाया जाता है कि बाप का वर्षा बाप दे या न दे, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलेगा। तो देखो शिव बाप का अखूट ज्ञान धन का भंडार का वर्षा सभी बच्चों को मिलता है, है? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो ग्रैंडफादर नहीं है, है? ग्रैंडफादर नहीं, वो सिर्फ बाप है, फादर है, सुप्रीम फादर, लेकिन ग्रैंडफादर नहीं। तो ग्रैंडफादर कौन? जिस तन में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, जिसके लिए बोला कि वो बीज बोने वाला बाप भी है और अंत में वर्षा देने वाला बाप भी है, मध्य में सुप्रीम टीचर भी है और अंत में सदगति करने वाला सदगुरु भी है। तीनों ही एक ही व्यक्तित्व में है, अलग अलग व्यक्तित्व नहीं है, तीन व्यक्तित्व नहीं है। तो उस व्यक्तित्व को, उस रथ को प्रत्यक्ष नहीं करना है अज्ञानियों के सामने। लेकिन दुनिया के सामने प्रत्यक्ष ही नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे जानेगी उस साकार स्वरूप को? लिंग रूप को जो बड़ा रूप दिखाया जाता है मंदिर में, यादगार सोमनाथ मंदिर में बड़ा लिंग रूप दिखाया गया, कैसे याद करेगी? साकार को याद करना सहज होता है या निराकार ज्योति बिंदु को याद करना सहज होता है? क्यों नहीं? क्योंकि जन्म जन्मांतर की आदत हमारी पड़ी हुई है। द्वैतवादी द्वापर युग से हम अपन को देह समझते आए, जन्म जन्मांतर की आदत पक्की हो चुकी है कि देहधारियों से हमारा प्यार होता रहा। हमने अपनी देह को याद किया और देह के संबंधियों को याद किया। आत्मा का स्वरूप हम जानते ही नहीं थे तो बड़े रूप को याद किया या छोटे रूप को याद किया? है? बड़े रूप को याद किया। अरे स्त्री भी है, सारा जीवन किसको याद करती है? जिससे सुख मिला है जीवन में उसको याद करती है। पुरुष से सुख मिला है तो अंत समय में स्त्री को पुरुष लिंग, पुरुष का वो रूप याद आ जाता है। सारा जीवन जो याद किया होगा वो अंत समय में याद जरूर आएगा। तो अंत मते सोगति, अगले जन्म में पुरुष का जन्म मिलता है। ऐसे ही पुरुष के लिए होता है। पुरुष ने सारा जीवन जिसके साथ लगाव लगाया देह का, तो अंत समय में वो फीमेल देह जरूर याद आती है, और याद आएगी तो अंत मते सोगते हो जाए, अगला चोला पुरुष को स्त्री का मिलेगा।
नहीं बाबा, अभी जब तक बात तो याद करेंगे, पुरुष तुम तो
याद गेंग 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 गेंगे, और ये बीच बीच में अनिश्चय बुद्धि होते जा रही है। सो
तो बात से याद आएगा।
अरे माया किसी को छोड़ेगी नहीं, अहंकार में मत आओ। हाथ को भी नहीं छोड़े, क्यों पूछ रहे हो? तुमको सब कुछ बता दिया। वो बाप कहता है मेरे पास जो भी नॉलेज थी सब कुछ तुम बच्चों को दे दी, मैंने अपने पास कुछ भी रखा ही नहीं। तो ये पहले ही बता दिया क्या? माया किसी को छोड़ती नहीं सिवाय मायापति के। वो बात भूल गए, प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं सिवाय प्रकृतिपति के। समझ में नहीं आता बात? हाँ, तो अभी माया का फाइनल पेपर सामने खड़ा है, फाइनल पेपर में कितने पास होंगे? 8 नंबर बार नहीं है तो जो 1 नंबर बार में पहला नंबर है वो जब पास होगा तो बाकी सब क्या हो गए? फेल हो गए। आदि में भी ऐसे ही हुआ था, ब्राह्मणों की दुनिया में जब आदि हुआ था तो एक आत्मा एक तरफ, एक व्यक्तित्व तो एक शख्सियत, एक पर्सनालिटी एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई थी। आदि में हुआ सो अंत में भी होगा, अभी भी यही होने वाला है, तमाशा होने वाला है, पर्दा खुलने वाला है। नंबर बार 8 की माला निकलेगी जो भगवान शिव शंकर के भोलेनाथ के सर पर रखी हुई होती है, फिर नंबर बार 108 की माला के मन के आत्मा की यादगार निकलेंगे जो गले की माला बनती है। क्या जो पुत्र होते हैं तो बाप के गले में पड़ जाते हैं कि नहीं? हैं? पड़ते हैं, बाप उनको गले लगाता है, तो गले की माला भी है। और फिर थर्ड क्लास माला कौन सी है? हाँ, जो राज परिवार में आने वाली आत्माएं हैं भले राजा बने या न बने, लेकिन जन्म जन्मांतर जो राजाओं का परिवार बनता है, उन राजाओं के परिवार में संबंधी बनकर जरूर आएंगे। धृतराष्ट्र है, राजा था। दुर्योधन पुत्र था। वास्तविक रूप में सत्ता किसके हाथ में थी? दुर्योधन के हाथ में ही थी या दुशासन के हाथ में भी थी? दुशासन के हाथ में नहीं थी। अरे राष्ट्रपति का ड्राइविंग करने वाला जो अव्वल नंबर ड्राइवर होगा, चहिता, जैसे इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड चहिता था या नहीं है? था, तो उसके हाथ में सत्ता नहीं होती। उसकी सत्ता को लोग नहीं मानते हैं? मानते हैं। तो ऐसे ये 16,000 की माला है, वो दोनों बाहों में पड़ी हुई होती है, बाहों में चारों तरफ लपेटी हुई दिखाते हैं। जो भारत के पुराने पुराने मंदिर हैं, उनमें बड़ी गरारी होती है, नीचे बड़ा तसला रखा रहता है और वो माला पड़ी रहती है। माला के मणके सारे नीचे पड़े रहते हैं, दो दो चार चार लोग इकट्ठे आकर के उसको खींचते हैं। है 16,108 की माला जब संपन्न राजधानी तैयार होगी, तो उस समय ब्राह्मण बच्चे 10-10 4-4 5-5 15-15 मिलकर के सेवा करेंगे, भाग दौड़ करेंगे और उन माला के मणकों को खींच के बाप के गले की माला बनाएंगे। माला माने संगठन। लेकिन ये तीनों प्रकार की माला में से जब राजधानी स्थापन होगी, जिस राजधानी की स्थापना के टाइम की बात बताई कि राजा जनक को जीवन मुक्ति कितने टाइम में मिली?
1 सेकंड
में मिली। उस सेकंड में वो राजा जनक ही जीवन मुक्ति पाएगा, अव्वल नंबर पाएगा या 2-4 नंबर पहले पाएंगे? अव्वल नंबर एक होता है। जनक का अर्थ ये है, जन माने जन्म देने वाला, का माने करने वाला, जन्म का कार्य करने वाला उसको कहते हैं जनक। इस संसार में अव्वल नंबर जन्म देने का कार्य करने वाला कोई आत्मा होगी या नहीं होगी? है जो है वो ही जनक। तो राजा जनक की जो राजधानी स्थापन होती है, उस राजधानी में पहले प्रजा चाहिए, पहले राज्य अधिकारी चाहिए, सेनापति चाहिए, महामाती चाहिए, दास दासी चाहिए, परिवार के संबंधी चाहिए, पहले रानी चाहिए या राजा चाहिए? राजा है, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। ऐसा हिम्मतवान राजा है तो सारी प्रजा उसके चारों ओर घूमेगी, मिलिट्री बनकर के घूमेगी। इसलिए उदाहरण दिया है दुनिया के सितारों का। जो आसमान के सितारे हैं वो जड़ सितारे हैं, उन सितारों में एक ही सितारा है जो अटल अखंड अडोल रहता है, अपना स्थान कभी छोड़ता नहीं। और बाकी सितारे हैं अपना स्थान छोड़ते रहते हैं। तो ये दुनिया भी धरती के सितारों से बनी हुई है। मूल रूप में जो सितारे हैं हम ब्राह्मण बच्चे हैं, सूर्यवंशी बच्चे, सूर्य की औलाद। जो गीता में लिखा है, मैं जब आता हूँ तो पहले पहले ज्ञान किसको देता हूँ? सूर्य को ज्ञान देता हूँ। जिस सूर्य को ज्ञान देता हूँ उसको अपना टाइटल भी दे देता हूँ। क्या? अरे जो बाप है वो अपना बड़े बच्चे को टाइटल देता है या नहीं देता है? हैं? देता है। तो वास्तव में सूर्य तो एक है। जो धरणी माता से, पृथ्वी माता से डिटैच होकर हमेशा रहता है या अटैच होकर रहता है? डिटैच होकर रहता है, कभी अटैचमेंट में नहीं आता। लेकिन वो ज्ञान सूर्य शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जो ज्ञान सागर है, वो ज्ञान सागर धरती से अटैच होकर रहता है या डिटैच होकर रहता है? अटैच होकर रहता है। एक हिस्सा पृथ्वी और तीन हिस्सा समंदर का जल है। तो कौन किसकी गोद में बैठा हुआ है? है? हाँ, पृथ्वी माता है और सागर पिता है। वही ज्ञान सागर है जो सार रूप जब धारण करता है, ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ प्राप्त करता है, तो पहाड़ों पर उसकी यादगार दिखाई गई है। क्या है? इतना बड़ा सागर, ज्ञान जल का भंडार, ऐसा खूट भंडार जिसकी गहराई आज तक कोई मनुष्य नाप ही नहीं सका। शास्त्रों में कथा आती है, ऑर्डर दिया गया ब्रह्मा और विष्णु को, शिवलिंग का आदि अंत जानकर आओ। ब्रह्मा ऊपर की ओर गया और विष्णु नीचे की ओर गया, वापस आ गए। हमें उनका आदि अंत पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसा ये ज्ञान सागर है, वो विस्तार रूप में है, ज्ञान का विस्तार बड़ा रूप, और फिर ज्ञान का सार रूप भी है जिसमें देवान का मिट्टी का अंश मात्र भी नहीं। उसकी यादगार क्या? अरे अभी तो बताया, वो तो अमरनाथ हो गया, ज्ञान मानसरोवर। तो पहाड़ पर, कैलाश पर्वत पर जो ज्ञान मानसरोवर सरोवर है, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे सात्विक सरोवर, तो वो ज्ञान सागर जो है वो सूर्य का टाइटल लेता है। इसलिए गीता में लिखा है कि मैं जब आता हूँ तो किसको ज्ञान देता हूँ पहले पहले? है? सूर्य को ज्ञान। तो वो सूर्य है, और सूर्य से जो बच्चे नंबर बार प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, जैसे आठ अष्टदेव, जिन आत्मा रूपी मणकों की यादगार शिव शंकर भोलेनाथ के सर पर दिखाई जाती है, वो आठ बच्चे जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं तो राजधानी पक्की स्थापन हो जाती है।
और एक भी होता
है
ना? गंगा भी है ना?
है, गंगा, गंगा ही तो निकालने वाली है माँ। वो माता है, कन्या है, पिता की क्या संबंध में है? है? हाँ, कन्या के संबंध में है। उसको धारण करने वाला कौन है? उस कन्या को धारण करने वाला कौन है? अरे नाम क्या है? गंगाधर है। वो गंगाधर सर पे क्यों धारण करता है? आठ को या गंगा को? जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, बाप का धंधा संभालने वाले बच्चे होते हैं, उन बच्चों का चाम प्यारा होता है या काम प्यारा होता है? तो गंगा ने जो कार्य किया वो कार्य किसी ने नहीं कर पाया। गंगा ऐसा कार्य करती है जो बड़े से बड़ा माछला का नाम क्या है? मगरमच्छ, बड़ी मछली, जो मत्स्यावतार कहा जाता है भारत में। कौन है मछली बड़ी बड़ी? जगदम्बा। उसको भी कंट्रोल कर लेती है, उसके ऊपर भी सवारी करती है। तो बताओ, ज्ञान में जगदम्बा बड़ी हुई या गंगा बड़ी हुई? गंगा बड़ी होगी। जगदम्बा सारे जगत की अम्बा है, भले हिंदुओं की भी अम्बा है, पहले पहले मुसलमानों की भी अम्बा है, कोई भी धर्म वाले हों सबकी अम्बा है। वो नाम ही है जगदम्बा। जगत में कितने होते हैं है? जगत में सभी धर्म वाले होते हैं या कोई एक दो धर्म वाले? सभी हुए जगदम्बा के बच्चे। तो वो जगदम्बा इतनी ज्ञानी नहीं है, ज्ञान उतना बांटने वाली भी नहीं है, इसलिए जो बड़े बड़े महाविद्यालय होते हैं, स्कूल या कॉलेज होते हैं, उनके गेट पर एक ताक बनाते हैं, छोटा सा मंदिर, और जगदम्बा की छोटी सी मूर्ति रखते हैं। क्यों? लक्ष्मीनारायण का भव्य मंदिर बनाते हैं और बड़ी सुंदर मूर्तियां रखते हैं, और जगदम्बा का छोटी सी मूर्ति छोटे से ताक में छोटे मंदिर में रखते हैं।
दुर्गा पूजा बड़ी जोर से
होता है। मेला है, मेला, मेला में मैला इकट्ठा होता है या श्रेष्ठात्मा इकट्ठी होती है? मेला किसका गाया हुआ है? देवियों का मेला गाया हुआ है सबसे बड़ा, या कोई देवता का गाया हुआ है? है? देवियों का गाया हुआ है। जय माता दी। अरे जय माता दी करने वाले बाप को क्यों भूल जाते हैं? तुम्हारी माता दी क्या विधवा थी या है? विधवा की जय होती है भारतवर्ष में? भारत में विधवा को पूजते हैं क्या? सधवा को पूजते हैं या विधवा को पूजते हैं? सधवा को पूजते हैं। ये परंपराएं कहाँ से पड़ी है? संगम युग में जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं, तो ये दुनिया की जितनी भी परंपराएं हैं, जो शास्त्रों में गाई हुई हैं, जिन शास्त्रों के आधार पर हिंदू लोग आज भी परंपराएं निभाते हैं, तो शास्त्र झूठे या सच्चे है? ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं झूठे, आप क्या कहेंगे है? अरे सच्चे हैं या झूठे हैं? सच्चे तो हैं, लेकिन उस सच्चाई का इंटरप्रिटेशन करने वाले झूठे हैं, विकारी हैं, विकारी मनुष्य हैं। गीता तो सत्य है, श्लोक सच्चे हैं, लेकिन गीता का जो इंटरप्रिटेशन अनेक प्रकार की टीकाएं हुई हैं, वो विकार भोगने वाले मनुष्यों ने, कामी क्रोधियों ने की है या निर्विकारी ने की है? है, तो विकारी मनुष्य जब टीकाएं करेगा व्याख्या करेगा तो उसमें अपनी मनमत घुसेड़ेगा या नहीं घुसेड़ेगा। इसलिए सारी गीताओं में जितनी भी टीकाएं आज तक लिखी गई, 108 से ऊपर टीकाएं लिखी गई, उन टीकाओं के पढ़ने से मनुष्य मात्र विकारी बन गया। गीताओं में सब में यही बात एक पक्की कर दी गई, गीता का भगवान कृष्ण, अरे कृष्ण द्वापर के अंत में आया, द्वापर के अंत में विद्वान ने कृष्ण को ठोक दिया और कृष्ण भगवान बन के आया और कौन से युग की स्थापना करके गया, कलयुग की स्थापना करके गया, बारे भगवान। अरे द्वापर युग में एक तरफ शास्त्रों में लिखते हो द्वापर युग होता है 8 कला संपन्न, त्रेता है 14 कला, सतयुग है 16 कला संपन्न, तो द्वापर में तुमने 16 कला कृष्ण को कहां से ठोक दिया। शूटिंग का हिसाब किसी को नहीं पता है, इस ब्रॉड ड्रामा की रिहर्सल कब होती है ये कोई की बुद्धि में नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बाप के द्वारा जब शिव बाप के अखूट भंडार ज्ञान का क्लैरिफिकेशन मिलता है सुप्रीम टीचर के रूप में, तब ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। तो बताया शिव बाबा सतयुग का रचयिता है, शिव बाप नहीं है, शिव बाबा बताया साकार निराकार के मेल को, शिवलिंग में जो लिंगाकार पत्थर है वो साकार की यादगार, जो पत्थर बुद्धि बनकर रहता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तब तक पत्थर बुद्धि रहता है जब तक 500-700 करोड़ भी मनुष्य आत्मा का ज्ञान पक्का न हो जाए। नहीं समझ में आया, 500-700 करोड़ भी मनुष्य आत्मा जब समझने लगे कि मैं आत्मा हूं देह नहीं हूं, तब तक उस आत्मा को पत्थर बुद्धि बन करके रहना है, शरीर के आधार पर। भगवान आकर तन का ही आधार क्यों लेता है, मन बुद्धि आत्मा का आधार क्यों नहीं लेता। अरे कहीं मुरली में बोला, अरे ब्रह्म वाक्य में कहीं बोला कि मन बुद्धि रूपी आत्मा का आधार लेता हूं, है नहीं, क्योंकि भगवान का तो नारा है, क्या नारा है, स्वतंत्र रहो स्वतंत्र रहने दो, आत्मा को स्वतंत्र किया कि तुम सच्चाई को मानो या न मानो, कितना मानो कितना न मानो ये आत्मा के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन मनुष्य सृष्टि की एक आत्मा है जिसके तन को कंट्रोल करता है, रथ को कंट्रोल करता है, जो महाभारत युद्ध में गीता सुनाई जाती है उस गीता में रथ दिखाते हैं, किसको, अर्जुन को, अर्जुन माने जिसने ज्ञान का अर्जन किया, अर्जुन माने कमाना। दुनिया भी लोग होते हैं वो स्थूल धन का अर्जन करते हैं, ये बेहद के बाप के बच्चे आत्मा हैं, ये क्या अर्जन करते हैं, ज्ञान धन का अर्जन करते हैं। उन ज्ञान धन का अर्जन करने वालों में जो अब्बल नंबर है उसे अर्जुन कहा गया, वो ज्ञान धन के आधार पर अपने सद्भाग्य को जन्म जन्मांतर बनाने वाली आत्मा हीरो पाठधारी कही जाती है। इसलिए वो आत्मा इस रूपी रंगमंच पर निमित्त बनती है शरीर के आधार पर, इस बात का निमित्त, निमित्त साकार में बना जाता है या निराकार आकार में? साकार में निमित्त बना जाता है। किस बात के निमित्त बनती है? अरे अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड का फाउंडेशन डालने के निमित्त बनती है। कैसा ज्ञान यज्ञ? अविनाशी। ऐसे नहीं संगम युग तक रहेगा क्या? चारों युगों में अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ चलता ही रहता है, भले दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, ज्ञान भी चार अवस्थाओं से पसार होता है, लेकिन ज्ञान का कभी विनाश, संपूर्ण विनाश नहीं। जैसे देवी देवता सनातन धर्म का कभी विनाश नहीं होता, किसी भी धर्म का विनाश नहीं होता। इस रंगमंच पर 5-4 वर्ष के ड्रामा में कोई धर्म हमेशा के लिए लोप हो जाता है, हर 5-4 वर्ष के बाद वो ही धर्म पिताएं 2,500 वर्ष पूरे होने के बाद आ जाते हैं द्वैतवादी युग। तो ये सनातन धर्म ऐसा है जो ऑलराउंड पार्टधारी है। सनातन धर्म का प्रणेता, धर्म पिता, जिसके नाम पर ये सनातन धर्म चलता है, सभी धर्मों का नाम धर्म पिता के आधार पर चलता है। बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म, धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। आज भारतवासियों से पूछो तुम्हारे धर्म का नाम क्या है, तो कह देंगे हिंदू धर्म। अरे हिंदू शब्द का अर्थ क्या है? हिंग माने हिंसा, दू माने दूते, जो हिंसा को दूर करे वो है हिंदू धर्म। तो क्या भारतवासी हिंसा में सबसे आगे बढ़कर हैं या पीछे हट गए? है हिंसक विदेशी भारत में आए तो हिंसा सिखा के गए या अहिंसक बना के गए? हिंसा सिखा के गए। है
ज्ञान के तो सद्गुरु में
है, तो बाबा
सद्युग
में बाबा। क्या ज्ञान लेते हो गीता पाठशाला के मैनेजर बन के रहे इतने लंबे टाइम तक? बाबा ने तो बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम। अब क्यों बाबा हो गया? सत्युग में बाबा होता है कि नहीं? वो है चारों युगों की शूटिंग में होता है या नहीं? चारों युगों में संगम युग नहीं रहेगा, चारों युगों में शिव बाबा की सोल रहेगी, संगम युग में शिव बाबा का शरीर भी रहेगा। हाँ तो प्रसंग अंतर हो गया, क्या बात चल रही थी? है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का जो निमित्त मात्र बनता है, जिसे यज्ञ पिता कहा जाता है, वो यज्ञ पिता क्षेत्र भी है। यज्ञ का क्षेत्र जिसे कहते हैं यज्ञ कुंड, इसके आधार पर बड़े से बड़ा दुनिया में युद्ध विख्यात है। कौन सा युद्ध? महाबारी महाभारत युद्ध। भारत के नाम पर क्यों पड़ा? इंग्लैंड युद्ध क्यों नहीं? अमेरिका युद्ध क्यों नहीं? क्योंकि भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो संगम से लेकर के कलयुग के अंत तक भी जो हीरो पार्ट धारी है, ऐसा पार्ट बजाता है संकल्पों के आधार पर, वाचा के आधार पर, वाइब्रेशन के आधार पर, कर्मेंद्रियों के कर्मों के आधार पर, ऐसा ज्ञान युक्त श्रेष्ठ पार्ट बजाता है कि वो अविनाशी ज्ञान यज्ञ कुंड कहा जाता है। उसका ज्ञान कभी लोप होता ही नहीं, और जब लोप होता है महामृत्यु के समय, कब? जब संगम में बाप आता है, जिस तन में आता है उस तन रूपी बड़े आकार को पत्थर बुद्धि कहा जाता है। तन क्या बन जाता? पत्थर बुद्धि। ये जो शरीर मिलता है पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिलता है या नहीं मिलता है? है? गर्भ में जो पिंड पलता है, आत्मा तो बाद में आती है, जो पिंड पलता है तो जिस आत्मा को उस पिंड में प्रवेश करना है चार पांच महीने के बाद, उस आत्मा के कर्मों के जो वाइब्रेशन बनते हैं पूरे जीवन के, पूर्व जन्म के भी वाइब्रेशन मिक्स हैं, वो वाइब्रेशन उस पिंड का निर्माण करते हैं। शरीर बनता है कि नहीं? पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर पिंड बनता है नहीं? अब समझ लो कि कोई बड़े आदमी का बच्चा है, बड़े राजा का बच्चा है, वो कुसंग में आ जाए, और छोटे आदमियों के बच्चे भी कुसंग में आ जाए, तो ज्यादा बिगड़ल कौन बनेगा? तो जो इस मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो इस दुनिया में जो बड़े से बड़ा बाप है, उसका बच्चा है या नहीं है? है? तो उसको अंतिम जन्म में कैसा शरीर मिलेगा? है? कैसा शरीर मिलेगा? है? ग्रेनाइट पत्थर जैसा, उससे कड़क पत्थर कोई होता ही नहीं। हीरा बहुत कड़क होता है, उसकी यादगार है माउंट आबू। दुनिया में एक ही ग्रेनाइट का एक पत्थर है, जो सारा पहाड़ एक ही पत्थर से बना हुआ है, और धरने में इतना गहरा है कि दुनिया में बड़े बड़े भूकंपों से बड़ा विनाश होगा मनुष्य सृष्टि का। सबसे बड़ा विनाश होता है भूकंप से, वो आबू पर्वत पर भूकंप का असर नहीं होने वाला अंत तक, बाकी तो अंत में जाकर के सब, चाहे जड़ पदार्थ हो, चाहे जंगम चैतन्य पदार्थ हो, सब समा जाएंगे एक में। अव्यक्त मूर्तिना गीता में शब्द आया है, इस अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग में से सारा जड़ जंगम संसार निकलता है, और इसी में महामृत्यु के समय समा जाता है। ओम शांति।